आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जो लोग कौमी सलामती के लिए खतरा हैं उन्हें भारत में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक मुठभेड़ में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। इसरो ने स्पेडेक्स मिशन के अपने हिस्से के तौर पर रोलिंग तजुर्बे को कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। हुकूमत ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए दरखास्तें तलब की हैं। चिली के सदर गैब्रियल बोरिक फोंट 1 अप्रैल से भारत का 5 रोजा दौरा करेंगे और भारतीय खवातीन ने उर्दुन के अम्मान में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में चांदी का 1 और कांसे के 2 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जिन लोगों से कौमी सलामती को खतरा लाहिक होगा उन्हें भारत में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इमिग्रेशन और गैर मुल्कियों से मुतालिक बिल 2025 पर बहस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि चाहे रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी, अगर वो भारत बदमनी पैदा करने के लिए आते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनाब शाह ने कहा कि मुल्क कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक रह सके।
देश धर्मशाला नहीं, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहाँ आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी।
ये बिल बाद में लोकसभा से मंजूर हो गया। इस बिल का मकसद इमिग्रेशन से मुतालिक कवानीन को जदीद बनाना है और इसमें पासपोर्ट, सफरी दस्तावेजात, वीजा और रजिस्ट्रेशन से मुतालिक मरकजी हुकूमत के लिए मखसूस इख्तियारात की गुंजाइश है। ये बिल एक जैसे कई कवानीन से बचने के लिए लाया गया है। उमूर दाखिला और इमदाद बहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने ऐलान किया है कि हुकूमत सहकार टैक्सी शुरू करेगी जो इमदाद बहमी इदारों के जरिए ऊबर और ओला की तर्ज पर चलाई जाने वाली सर्विस है। लोकसभा में बहस के दौरान इजहार ख्याल करते हुए जनाब शाह ने कहा कि यह पहल सहकार से समृद्धि यानी कोऑपरेटिव के जरिए खुशहाली के ऐन मुताबिक है। उन्होंने बताया कि चंद महीनों में एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी जिसमें दोपहिया गाड़ियों, टैक्सी, रक्षों और चार पहिया गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन मुमकिन हो सकेगा और उसका मुनाफा बराह रास्त ड्राइवर को हासिल होगा।
3.5 साल में सहकारिता मंत्रालय ने दिन रात एक करे और कुछ ही महीनों में ओला उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है जो 2-व्हीलर की टैक्सी का भी रजिस्ट्रेशन करेगी, जो रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन करेगी और 4-व्हीलर का भी करेगी और उसका मुनाफा वो ड्राइवर के पास जाएगा।
जनाब शाह ने इस बात पर जोर दिया कि सहकार से समृद्धि सिर्फ एक नारा नहीं है। इमदाद बहामी की वजारत ने इसे पूरा करने के लिए गुज़श्ता 3.5 साल में दिन रात काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही एक कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी कायम की जाएगी जो मुल्क के कोऑपरेटिव सिस्टम के अंदर इंश्योरेंस का निज़ाम संभालेगी। जम्मू कश्मीर में कल रात कठुआ जिले के सुफैन जंगलाती इलाके के जुठाना में एक तसादुम में 3 दहशतगर्द और इतनी ही तादाद में सिक्योरिटी दस्तों के अहलकार हलाक हो गए। पुलिस के एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट और एक पैरा कमांडो समेत 4 सिक्योरिटी अहलकार जख्मी हुए हैं। कल सुबह यह तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब सुफैन जंगलाती इलाके में तलाश की एक कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी दस्तों का दहशतगर्दों के ग्रुप से सामना हुआ। 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया, ताहम उनकी लाशें अभी बरामद नहीं हुई हैं। इलाके में कुमक भेज दी गई है। तसादुम की जगह उस मकाम से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है जहां बैन अल-अक़वामी सरहद से मुत्तसिल हीरानगर सेक्टर के सानियाल गांव में 23 मार्च को 5 दहशतगर्दों को इससे पहले देखा गया था। इसके बाद मुहासरे और तलाश की कार्रवाई शुरू की गई। उत्तर प्रदेश पुलिस के डायरेक्टर जनरल प्रशांत कुमार ने आइंदा ईद उल फितर के त्यौहार के दौरान अमन कानून की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी से मुतालिक रहनुमा खतूत जारी किए हैं। ये हिदायत रियासत भर में पुलिस के सभी जोनल एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स, पुलिस कमिश्नर्स, इलाकाई इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, पुलिस के सीनियर सुपरिंटेंडेंट और पुलिस के सुपरिंटेंडेंट्स को जारी की गई हैं। रहनुमा खतूत के मुताबिक शनाख्तशुदा हसास इलाकों में सिक्योरिटी से मुतालिक तैनाती पुलिस बंदोबस्त जोन और सेक्टर स्कीम के तहत की जानी चाहिए। हुक्काम को किसी भी नई रिवायत को मुतारिफ किए जाने से बाज रहने और एहतियाती इकदाम के तहत समाज दुश्मन अनासिर की एक फहरिस्त को अपडेट किए जाने की हिदायतें भी दी गई हैं। डीजीपी ने अमन कमेटियों के मेंबरान और मजहबी रहनुमाओं का तआवुन हासिल करने के लिए मीटिंगें किए जाने पर जोर दिया है। खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो ने अपने खलाई डॉकिंग तजुर्बे स्पेडेक्स मिशन के हिस्से के तौर पर रोलिंग का तजुर्बा कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। इसकी तस्दीक करते हुए इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा कि इसरो को मुख्तलिफ हालात में डॉकिंग की जरूरत होगी, जिसमें से कुछ को मौजूदा मिशन के हिस्से के तौर पर करने की कोशिश की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
रोलिंग या घूमने का तजर्बा इसरो को ये समझने में मदद करेगा कि डॉकिंग के लिए मुख्तलिफ सम से किसी चीज को मतलूबा जगह पर लाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है। इससे इसरो को ये जानने में भी मदद मिलेगी कि आया डॉकिंग का तजर्बा उमूदी तौर पर किया जा सकता है। ये तजर्बा चंद्रयान 4 जैसे मुस्तकबिल के मिशनों के लिए निहायत अहम है। ये तजर्बा कीमती डेटा फराहम करेगा और इसरो को मुतअद्दिद सॉफ्टवेयर और ग्राउंड स्टेशन कंट्रोल की तौसीक करने में भी मदद फराहम करेगा। इससे कबल 13 मार्च को इसरो ने स्पेडेक्स मिशन के एक हिस्से के तौर पर 2 सैटेलाइट्स की अनडॉकिंग को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया था। ये कामयाबी भारत के खलाई तहकीक के सफर में एक अहम संग मील की हैसियत रखती है। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा है कि इसरो स्पेडेक्स मिशन के हिस्से के तौर पर मजीद डॉकिंग करेगा। विष्णु की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान।
ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। ख्वातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। दरख्वास्त गुजार 1 अप्रैल से नेशनल अवार्ड पोर्टल के जरिए दरख्वास्तें दे सकते हैं। एक बयान में वजारत ने कहा है कि कोई भी बच्चा जो भारत में रिहायश पजीर भारतीय शहरी है और जिसकी उम्र 5 साल और 31 जुलाई 2025 तक 18 साल से ज्यादा नहीं है, वो इन अवार्ड्स का अहल है। वजारत बहादुरी, खेलकूद, समाजी खिदमत, साइंस और टेक्नोलॉजी, माहौलियात, फनून और सकाफत में नुमाया हुसूलियाबियों के लिए गैर मामूली सलाहियत के हामिल बच्चों को एजाज देने के लिए हर साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का एहतमाम करती है। ऑनलाइन दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। मध्य प्रदेश हुकूमत रियासत के फितरी, रूहानी और सकाफती विरसे को उत्तर प्रदेश में बड़े मजहबी मकामात से जोड़ने के इकदाम पर काम कर रही है। मध्य प्रदेश का सियाहत से मुतालिक बोर्ड गंगा नर्मदा सियाहती राहदारी के फरोग पर तवज्जो मरकूज कर रहा है, जिसका मकसद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दरमियान सियाहती तआवुन को फरोग देना है। तफसील हमारे नामानिगार से।
सियाहत, सकाफत और मजहबी ट्रस्ट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शेखर शुक्ला ने बताया है कि गंगा नर्मदा सियाहती राहदारी प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, कानपुर और आगरा को मध्य प्रदेश में मेहर, भेदघाट, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगास से जोड़ेगा। इसके अलावा चित्रकूट को अयोध्या से जोड़ने के लिए रामपथ गमन कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की GDP में सियाहत का तकरीबन 3.35% हिस्सा है। रियासती हुकूमत का मकसद साल 2028 तक इसे बढ़ाकर 4-5% तक करना और 2047 तक इसे 8-10% तक करना है। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल बेल्जियम के शाह फिलिप से फोन पर बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने मजबूत बाहमी रिश्तों को मजीद वसत देने, तिजारत और सरमायाकारी को फरोग देने, नीज अख्तरा और पायदारियत के शोबों में इश्तराक को तआवुन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। जनाब मोदी ने शहजादी एस्ट्रिड की क्यादत में बेल्जियम के हालिया इकतसादी मिशन की भी सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव की जापान एसोसिएशन के चेयरपर्सन ताकेशी निनामी की क्यादत में एक आला इख्तियारती वफ़ से मुलाकात की, ताकि भारत और जापान के दरमियान इक्तसादी तआवुन को गहरा करने के लिए उनके ख्यालात और नज़रियात हासिल किए जा सकें। जमहूरिया चिली के सदर गैब्रियल बोरिक फॉन्ट 1 अप्रैल से भारत का 5 रोजा सरकारी दौरा करेंगे। उनके हमराह एक आला सतही वफ्त होगा जो वुजरा, अराकीन पार्लियामेंट, सीनियर हुक्काम, कारोबारी अंजुमनों, मीडिया और भारत चिली सकाफती राबते की सरकर्दा शख्सियात पर मुश्तमिल होगा। पेश है एक रिपोर्ट।
صدر بورک اپنے دورے کے دوران 1 اپریل کو وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بات چیت کریں گے، جس میں بھارت چلی تعلقات کے تمام تر پہلوؤں کا احاطہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم دورے پر آئے معزز مہمان کے اعزاز میں ایک زورانے کا اہتمام کریں گے۔ صدر بورک صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے بھی ملاقات کریں گے، جو ان کے اعزاز میں ایک عشائیے کا اہتمام کریں گی۔ صدر بورک 5 اپریل کو چلی روانہ ہونے سے قبل آگرہ، ممبئی اور بنگلورو جائیں گے۔ چلی لاطینی امریکی خطے میں بھارت کا ایک اہم شراکت دار ہے۔ نئی دلی سے پریا منڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان۔
پیرس میں اہم یورپین رہنماؤں نے یوکرین کے لیے چوتھی امن و سلامتی سے متعلق میٹنگ میں شرکت کی۔ میٹنگ کے بعد ایک پریس کانفرنس میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ شرکت کرنے والے سبھی ملکوں نے اس بات کی حمایت کی کہ جنگ ختم ہونے تک روس کے خلاف پابندیاں نہیں ہٹائی جائیں گی۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے آج اندرونی اوڈیشہ کے کچھ مقامات پر گرمی کی پیش گوئی کی ہے۔ ساحلی آندھرا پردیش اور یانم میں بھی دن بھر گرمی اور ہپس کا موسم رہنے کا امکان ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کل تک اروناچل پردیش کے حصوں میں شدید بارش یا برف باری کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ کیرلا، ماہے، جنوبی اندرونی کرناٹک، آسام، میگھالیہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں آج گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے اسٹیٹ ڈائننگ روم میں افطار ڈنر میں شرکت کی۔ مہمانوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب ٹرمپ نے صدارتی انتخابات میں ان کی پارٹی کو حمایت دینے کے لیے امریکی مسلمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ جناب ٹرمپ نے مزید کہا کہ ان کی انتظامیہ مسلم برادری سے کیے گئے وعدے پر قائم ہے۔ اس کے علاوہ وہ مشرق وسطی میں امن قائم کرنے میں بھی مصروف ہے۔
Every day we're keeping our promises to the Muslim community. My administration is engaged in relentless diplomacy to forge a lasting peace in the Middle East, building on the historic Abraham Accords, which everybody said would be impossible. And now we're going to start filling them out because, as you know, Biden did nothing to fill them out. He did absolutely. We had the four great countries and nothing happened.
اردن کے عمان میں سینئر ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں کل مقابلے کے تیسرے روز بھارت نے سونے کا ایک اور کانسے کے دو تمغے جیتے۔ بھارت کی خواتین کشتی کھلاڑیوں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور رتیکا نے چاندی کا، جبکہ مسکان اور مانسی لاتھر نے کانسے کا ایک ایک تمغہ حاصل کیا۔ انڈین پریمیئر لیگ IPL میں کل رات حیدرآباد میں لکھنؤ سپر جائنٹس نے سن رائزرز حیدرآباد کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ حیدرآباد نے لکھنؤ کو 191 رن کا جیت کا نشانہ دیا تھا، جسے اس نے 16 اوورز اور ایک گیند میں 5 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ آج چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں چنئی سپر کنگز کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلور سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد عمار۔
شکریہ ارجمن۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ پرتاب نے امیگریشن اور غیر ملکیوں سے متعلق بل 2025 کو لوک سبھا میں منظور کیے جانے کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا کہ یہ بل قومی سلامتی کو مستحکم کرنے کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ اخباروں نے وزیر داخلہ امیت شاہ کے اس بیان کو بھی نمایاں طور پر شائع کیا ہے کہ جموں کشمیر میں حریت سے وابستہ لیڈرز اب علیحدگی پسندی ترک کر رہے ہیں۔ روزنامہ ملاپ نے راجستھان، پنجاب، ہریانہ اور چھتیس گڑھ ہائی کورٹس میں 10 مستقل ججوں کی تقرری کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے وزارت دفاع کے ذریعے فوج کے لیے 2500 کروڑ روپے کی مالیت کے ناگ میزائل سسٹم اور ہلکی گاڑیاں خریدنے کے معاہدے پر دستخط کیے جانے کی خبر کو بھی اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اخباروں نے سائبر جرائم پر حکومت کی کارروائی کی خبر کو بھی صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔
اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ جو لوگ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں انہیں بھارت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جموں کشمیر کے کٹھوا ضلع میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ ایک مٹ بھیڑ میں 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرو نے اسپیڈیکس مشن کے اپنے حصے کے طور پر رولنگ تجربے کو کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا ہے۔ حکومت نے پردھان منتری راشٹری بال پرسکار 2025 کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔ چلی کے صدر گیبریل بورک فونٹ 1 اپریل سے بھارت کا 5 روزہ دورہ کریں گے۔ اور بھارتی خواتین نے اردن کے عمان میں سینئر ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں چاندی کا ایک اور کانسے کے دو تمغے جیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔